यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार भगवान नरसिंह देव हिरण्यकशिपु को हरण करने के लिए प्रकट होते हैं, और जो उनके शुद्ध भक्त प्रहलाद महाराज को प्रसन्नता प्रदान करने के लिए भगवान नरसिंह देव में प्रकट होते हैं। और वास्तव में देखा जाए तो हिरण्यकशिपु भी कोई साधारण दानव नहीं था, बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में अनंत काल के लिए उनका नाम यहां पर है। तो वो तो जय और विजय है जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और भगवान को भगवान की लीला में भाग लेने के लिए प्रकट होते हैं। लेकिन फिर भी इस प्रसंग से हमारे लिए हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। यहां पर भगवान नरसिंहदेव प्रकट होने के बाद हिरण्यकशिपु का वध करते हैं, और फिर उनके बहुत सारे सैनिक भगवान पर आक्रमण करते हैं और भगवान उनको भी पूरी तरह से समाप्त करते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है, ध्वभूत सर्व लोकेस्मिन् देव आसुर एव च विष्णु भक्त स्मृतो देव आसुरस्तत् विपर्ययः। इस पूरे दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, सुर और असुर। विष्णु भक्त स्मृतो देव, देवगण कौन है जो भगवान विष्णु के भक्ति करते हैं। आसुरस्तत् विपर्ययः, और असुर कौन है जो विष्णु के भक्त नहीं है, वो असुर है। श्री प्रभुपाद समझाते हैं कि केवल विष्णु के भक्त को देव कहा गया है, ऐसे बहुत भक्त हो सकते हैं देवी देवताओं के, लेकिन वो इस कैटेगरी में नहीं आते हैं। यहां पर कहा गया है विष्णु भक्त स्मृतो देव, देवगण का मतलब है जो भगवान विष्णु को मानते हैं और विष्णु की उपासना करते हैं, उनको कहा गया है देवगण। और असुरगण वो है जो विष्णु को नहीं मानते हैं। और हम देखते हैं कि भगवद्गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक पूरा अध्याय इन दोनों के बारे में चर्चा की है। तो क्योंकि अंतकाल से ये दो प्रकार के लोग हैं, श्री प्रभुपाद यहां पर लिख रहे हैं, इस जगत की सृष्टि के समय से ही ये दो प्रकार के लोग हैं, कोई नई बात नहीं है, सृष्टि के समय से ही है। तो इन दो प्रकार के लोग, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे कि जब भगवान भगवद्गीता में इस अध्याय को शुरू किए और फिर देवगण के लक्षण बताए, फिर असुरगण के लक्षण बताए, तो अर्जुन को तुरंत डाउट आ गया कि मैं किस कैटेगरी में हूं। तो तुरंत अर्जुन प्रश्न करते हैं कि वास्तव में मैं किस कैटेगरी, तो भगवान कहते आप चिंता मत करो, आप तो जरूर देवगण हैं, आप चिंता मत करो, लेकिन हमें स्वयं को यह जानना बहुत जरूरी है कि हम किस कैटेगरी में हैं, बीच वाले कैटेगरी में हैं, इस कैटेगरी कौन से गुण है, उस कैटेगरी कौन से गुण है, जानना बहुत जरूरी है। तो इसलिए दोनों कैटेगरी के जो लक्षण है इसको जानना बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवतम के आठवें स्कंध में जो क्षीर सागर का मंथन के बारे में सुंदर लीला है। और इस लीला में हम सुर और असुर इन दोनों के बीच में ये अंतर बहुत अच्छी तरह से हम देख सकते हैं। तो जब एक बार इंद्रदेव अपने हाथी ऐरावत पर जा रहे थे तो उस समय सामने से दुर्वासा मुनि आ गए और दुर्वासा मुनि बहुत प्रसन्नता से अपना हार उतारकर इंद्रदेव को दिया। तो इंद्रदेव ने सोचा ऐसे बहुत हार मिलते रहते हैं, ठीक है आज इस हाथी को दे दे। तो इंद्रदेव ने हाथी को हार दिया। अभी हाथी को क्या बोला है? तो हाथी ने तुरंत उस हार को लेकर अपने पैर के नीचे कुछ लिया। दुर्वासा मुनि इसको देखकर बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने शाप दे दिया इंद्रदेव को कि जितना भी शक्ति है तुरंत सारा शक्ति छान। तो तुरंत ही असुरगण समझ गए, स्वर्गों पर आक्रमण की और पूरी बुरी तरह से देवगण मार गए। तो अभी असुरों का राज आ गया, असुरगण बहुत प्रभावशाली हो गए। जब असुरगण प्रभावशाली होते हैं तो कुछ सुख शांति नहीं होती है, जैसा आजकल की दुनिया में हम देख रहे हैं। प्रभुपाद विस्तार में बता रहे हैं अभी का सभ्यता क्या है, ईश्वर विहीन सभ्यता, इसमें कभी सुख शांति नहीं हो सकती। तो उस समय भी क्योंकि असुरगण प्रभावशाली हो गए तो इसी प्रकार था। तो वो सब देवगण बहुत चिंतित हो गए, वे सब गए ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी ने यही देखा कि असुरगण बहुत प्रभावशाली हो गए, ये अच्छा नहीं है इस दुनिया के लिए। तो उन्होंने सोचा कुछ तो करना चाहिए। इसी प्रकार जब हम देखते हैं कि हमारे हृदय में जो असुरिक प्रवृत्तियां वो बढ़ रही हैं, ये अच्छा साइन नहीं है। हमें चिंता होनी चाहिए कि असुरिक प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। जो बाहर के लोग होते हैं वो सोचते हैं कि जब घमंड अहंकार बढ़ रहा है तो बहुत अच्छा है, ये तो अच्छे लक्षण है। लेकिन खासकर भक्तों के लिए जब वो देखते हैं कि ये जो असुरिक लक्षण है वो बढ़ रहे हैं तो ये बहुत चिंता की बात है। और हमें सोचना चाहिए कि ये हमारे भक्ति के लिए अच्छा नहीं है, कुछ तो करना चाहिए। तो इसलिए ब्रह्मा जी बहुत चिंतित हुए और तुरंत उन्होंने सभी देवगण को लेकर शिव सागर के तट पर गए और वहां पर ब्रह्मा जी और देवगण बहुत सुंदर तरीके से भगवान की स्तुति प्रार्थना। तो उस समय जब वो प्रार्थना कर रहे थे उस समय हमको भगवान दिखाई नहीं दे रहा। तो हालांकि ब्रह्मा जी और देवगण को भगवान दिखाई नहीं दे रहा फिर भी शास्त्रों के अनुसार शास्त्रों पर विश्वास करके वो प्रार्थना कर रहे थे और शास्त्रों से ही प्रार्थना कर रहे थे। तो यह भी एक अंतर है देवगण और असुरगण। तो जो देवगण होते हैं उनको पूरा पूरी तरह से विश्वास होता है शास्त्रों के ऊपर और हालांकि वो भगवान को नहीं देख पाते हैं फिर भी उनको विश्वास है। लेकिन श्री प्रभुपाद जी की कृपा से हमें तो रोज भगवान दिखते हैं। श्री श्री राधा राधा रमन जी की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मां जी की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय। प्रभुपाद समझाते हैं कि असुर लोगों को शास्त्रों पर विश्वास विश्वास नहीं होता है। उनका विश्वास किसके ऊपर होता है? देखने पर। जब तक दिखाई नहीं देता है विश्वास नहीं करेंगे। तो भगवान ना दिखते हैं, नहीं दिखते हैं, नहीं विश्वास करेंगे। यह असुर लोग भगवान क्या है? लेकिन जो भक्तजन होते हैं, हालांकि उनको भगवान नहीं भी दिखते हैं, फिर भी वो विश्वास करते हैं। तो ब्रह्मा जी और अन्य देवता वो प्रार्थना कर रहे थे भगवान से। अन्य जगह पर भी हम देखते हैं, जब भगवान स्वयं यहाँ पर प्रकट हुए उस समय भी देवता सब गए भगवान से प्रार्थना करने के लिए। लेकिन उस समय तो भगवान प्रकट नहीं हुए, लेकिन इस समय भगवान विष्णु स्वयं ब्रह्मा जी और देवताओं के सामने बहुत ही सुंदर रूप में प्रकट हुए, मानो हजारों सूर्य के सामने प्रकट हुए। इस प्रकार भगवान उनके सामने प्रकट हुए और भगवान ने उनको समझाया कि ये समय आपके लिए ठीक नहीं है, तो इसलिए आपको अच्छा क्या है, आप असुरों से समझौता कर लीजिए। और पूरे डिटेल्स में भगवान उनको समझाते हैं कि किस प्रकार समुद्र मंथन करना चाहिए। और सब कुछ बताकर भगवान को खुश हो गए। तो दोनों असुरगण और देवगण ये मंदर पर्वत को उठाने के लिए और जो मंदर पर्वत है वो तो सोने से बना हुआ है, तो उस पर्वत को उठाकर जिसका वजन बहुत ही ज्यादा, तो उसको उठाकर इस समुद्र में लाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन क्योंकि उसका वजन बहुत ज्यादा था तो इसलिए उठा नहीं पाए और बीच में ही उसको नीचे रख दिया और पर्वत बहुत सारे असुरगण और देवगण के ऊपर ही गिर गया और उनके हाथ पैर टूट गए, कुछ बेहोश हो गए, कुछ मर गए। तो तुरंत वहां पर भगवान प्रकट हुए और केवल दृष्टिपात करके भगवान तुरंत सबको उठा दिया, मानो ऐसे कुछ नहीं हुआ। और फिर भगवान स्वयं गरुड़ जी पर आए और एक हाथ से, केवल एक हाथ से उस विशाल मंदर पर्वत को उठाकर, मंदर पर्वत असुरगण देवगण सबको उठाकर गरुड़ जी पर रख दिया और दोनों को समुद्र के पास ले गए। तो जब असुरगण ये सुनते हैं, जो नास्तिक लोग ये सुनते हैं, वो कहते हैं ये तो माइथोलॉजी है, ये तो केवल एक कल्पना है, इसमें कोई सत्य बात नहीं है। लेकिन जब भक्त लोग सुनते हैं पूरी तरह से विश्वास करते हैं इसके ऊपर, भगवान के लिए क्या असंभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। तो यहां पर भगवान केवल एक हाथ से इस विशाल पर्वत को उठाकर गरुड़ जी पर, और फिर उस पर्वत को समुद्र में डाल दिया, असुरगण देवगण उतर गए और फिर भगवान गरुड़ जी को वहां से भेज देते हैं, क्योंकि वहां पर उस मंथन के लिए बसुरी को बुलाना है, बसुरी जो एक सांप है, और गरुड़ जी के लिए सांप जो है उसका खाना है, भोजन है, तो इसलिए भगवान ने उसको भेज दिया। और फिर वस्तु को बुलाया गया और फिर मंथन शुरू हुआ। तो जब मंथन शुरू हुआ, भगवान ने वसुदेव के सिर की ओर सिर को पकड़ लिया और देवगण भगवान के पीछे पीछे गए और जो असुरगण थे वो वसुदेव का जो पूंछ है उसको पकड़ लिया। तो थोड़ी देर के बाद अशोकन सोचने लगे कि ठीक नहीं है कि पूंछ का भाग जो ये अमंगल है, जो सिर है वो मंगलमय है। तो प्रभा जी लिखते हैं जो अशोकन का सोचना है वो हमेशा भक्तों से उल्टा होता है, तो इसलिए अशोकन जो है वो हमेशा भगवान और भक्तों के सोचना जो है उसका ठीक उल्टा सोचता है। हालांकि भगवान को बना था कि क्यों सर की ओर पकड़ना चाहिए, क्योंकि भगवान ने सोचा कि ये तो वास्तव में बहुत डेंजरस है, जो सांप का सर जो है वो खतरनाक है, तो भगवान उसको हैंडल कर सकते थे, लेकिन असुर का केस नहीं समझ पाए। तो प्रभु जी लिखते हैं अगर बाद में हम देखते कि पहले तो विष प्रकट हुआ, तो प्रभु जी लिखते हैं कि अगर देवगण उस विष को पीने का प्रयास करते तो असुरगण भी कंपटीशन करते विष को पीने के लिए। वे सोचते कि अरे ये लोग पिए, हम तो जरूर पी सकते हैं इसको, और देखो हम कितना प्रसिद्ध हो जाएंगे इसको पीकर। तो जो असुरगण है वो ठीक उल्टा सोचते हैं, हमेशा भक्तों के साथ कंपटीशन, ये असुरों का लक्ष्य। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हम ये पूंछ को पकड़ने वाले हैं। तो भगवान ने ठीक है सर्जरी थी निश्चित है, तो भगवान तुरंत वहां से गए पूंछ पकड़ने के लिए, सब देवगण भी भगवान के पीछे चले गए, असुरगण सर को पकड़ लिए और फिर मंथन शुरू हुआ। तो जब मंथन शुरू हुआ तो थोड़े समय के बाद जो मंदर पर्वत था वो तो डूब गया और तुरंत वहां पर भगवान कछुए के रूप में प्रकट हुए, उसको नीचे से दर्शन दिए। और फिर जब मंथन शुरू हुआ तो वसुकी के मुंह से विष और आग निकलने लगा। अभी अशोकन समय थे तो सबका मुंह काला हो गया, और वैसे देवतागण भी वो भी प्रभावित हुए इस विष और अग्नि से, तो तुरंत वहां पर भगवान ने बारिश शुरू किया वहां पर ठंडा वातावरण पैदा करने के लिए। ऊपर से भगवान पर्वत के नीचे भी भगवान थे और ऊपर भी भगवान प्रकट हुए हजार भुजाओं के साथ, उस पर्वत को ऊपर से लाने से। तो इस प्रकार मंथन शुरू हुआ, अलग अलग चीज प्रकट हुए मंथन से, पहला तो विष प्रकट हुआ, फिर बाद में सुंदर घोड़ा हाथी यानी बहुत सारी चीज प्रकट हुई। और फिर अंत में धर्मपुत्री वहां पर आ गई अमृत का कलश लेकर। तो जैसे ही असुरगण ने उस अमृत का कलश को देखा तुरंत उसको छीन लिया और देवगण बहुत निराश हो गए, हमने तो इतना मेहनत किया था फिर भी ये लोग शत्रु ले। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं चिंता मत, देखिए यहां पर पूरे प्रसंग में जब हर एक बार जब भी देवगण कुछ कठिनाई में होते हैं तुरंत वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो जब मंदर पर्वत समुद्र में डूब गया तभी वो भगवान से प्रार्थना, जब वो बाद में एक्चुअली वो मंथन भी नहीं कर पाए तभी भी वो भगवान से प्रार्थना किया, और भगवान खुद अजीत इस रूप में आकर भगवान को मंथन भी कर रहे थे। देखिए सब कुछ भगवान ही कर रहे थे, वास्तव में भगवान नीचे भी थे ऊपर भी थे मंथन भी कर रहे थे, सबको प्रोत्साहन दे रहे थे, सब कुछ भगवान कर रहे थे। तो हर परिस्थिति में जब भी कुछ कठिनाई आती है जो देवगण है वो हमेशा भगवान को स्मरण करते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये भक्तों का लक्षण है। जब असुरों के जीवन में, नास्तिकों के जीवन में कुछ भी विपद परिस्थितियां आती हैं, कुछ भी घटनाएं आती हैं, वो सोचते हैं ये तो अकस्मात हो गया, बाय चांस। लेकिन वो भगवान के हाथ को नहीं दे पाते और वो भगवान से प्रार्थना नहीं करते। लेकिन जो भक्तजन होते हैं हर परिस्थिति में भगवान को याद करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। यह मुख्य अंतर है। भक्तजन ये कभी नहीं सोचते हैं कि हमारे प्रयास से इस कठिन परिस्थिति से हम निकल पाएंगे, हालांकि वो प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से जानते हैं कि केवल हमारे प्रयास से हम इस कठिन परिस्थिति से बाहर नहीं निकल सकते हैं, केवल भगवान की कृपा से ही संभव होगा। तो इसलिए इस प्रसंग में हम देखते हैं कि हर बार जो देवगण है वो हमेशा भगवान का स्मरण करते हैं। और फिर भगवान हमसे कहते हैं चिंता मत करो, मैं समस्या को सुलझा देता हूं। तो असुरगण ने उस अमृत का कलश को ले लिया और तुरंत झगड़ा शुरू किया। तो हर एक असुर कहने लगा, आम कोपा मुझे करेगी ना इसको। तो ये असुरों का लक्षण, असुर जो होते हैं वो हमेशा खुद के बारे में सोचते हैं, बाकी दुनिया का क्या हो जाए कुछ परवाह नहीं, लेकिन मुझे इज्जत होनी चाहिए, बस मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है, मैं, और कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है ही नहीं इस पूरी दुनिया में, मैं सबसे महत्वपूर्ण हूं, अहम ममेति जनस्य मोहयम अहम ममेति। यह असुरों का लक्ष्य, केवल खुद के बारे में, खुद की हितबुद्धि के बारे में सोचते और कुछ नहीं सोचते। तो तुरंत झगड़ा शुरू होगी। तो जब भी लोग स्वार्थी होते हैं, केवल खुद के बारे में सोचते हैं, तो क्या होता है, झगड़ा। जब तक व्यक्ति स्वार्थी होता है तब ऐसे कलह झगड़ा तुरंत शुरू होता है। लेकिन शास्त्र कहता है कि मनुष्य जीवन जो है वो स्वार्थी बनने के लिए नहीं है। दधीचि ऋषि कहते हैं भागवतम के छठे स्कंध में कि जब मनुष्य जीवन में कोई व्यक्ति स्वार्थी होता है तो जो पेड़ होते वो भी ऐसे मनुष्य को देखकर हंसते हैं, क्योंकि पेड़ सोचते हैं कि हम कम से कम हमको इतना स्वार्थी नहीं है। तो वास्तव में मनुष्य जीवन केवल निस्वार्थ बनने के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए है। लेकिन असुरगण ऐसे नहीं सोचते, वो सोचते बस मैं और मेरा और कुछ। तो ये आपस में झगड़ने लगे, मुझे चाहिए। तो जो कमजोर दैत्य थे वो कुछ कर नहीं सकते। तो वो कहने लगे, देखो यार ये ठीक नहीं है, देखो असुरगण देवगण हम दोनों ने प्रयास किया है, कुछ देवताओं को भी देना चाहिए, ऐसे वो कहने लगे। तो इस तरह बहुत बड़ा झगड़ा शुरू हो गया इन असुरों में। और उस समय वहां पर भगवान स्वयं बहुत ही सुंदर रूप ऐसा रूप जो किसी ने नहीं देखा। तो बहुत सुंदर मोहिनी मूर्ति इस रूप में आकर वहां पर प्रकट हुई। और जो असुरगण है बहुत ही कामुक होते हैं, तो तुरंत ही मोहिनी मूर्ति को देखकर आकर्षित होंगे और तुरंत पूछने लगे, आप कौन हो, कहां से आए हो? तो उन्होंने कहा कि बस देखो, हम सब झगड़ रहे हैं, आप इस झगड़ा को सुलझाने के लिए आप प्रकट हुए, बहुत अच्छा है, आप जो भी कहें हम करने के लिए तैयार हैं। तो मोहिनी मूर्ति ने कहा कि देखो, मैं तो एक साधारण वैश्य हूं, आप मुझ पर इस तरह भरोसा कैसे कर रहे हो? आप जो भी मैंने आपने वही चीज है, इस अमृत कलश को आप ही लीजिए। तो मैंने कहा देखिए, पूरा विश्वास है पक्का, मैं जो भी निर्णय लेने वाला हूं आप उसको स्वीकार करेंगे? जरूर सर, जो भी आपका निर्णय है परफेक्ट। तो जो असुरगण होते हैं वो जब हिंदुत्व के सामने आता है तो बस बाकी सब कुछ भूल जाते हैं। तो मोहिनी मूर्ति ने एक कलश को ले लिया, फिर असुरगण देवता स्नान किए और नए वस्त्र पहन लिए, और फिर मोहिनी मूर्ति ने सबको दो दो लाइन में बिठा दिया, एक असुरों का लाइन और देवताओं का लाइन, कहीं दूर पर बिठा दिया उनको। तो पहले मोहिनी मूर्ति असुरों के पास आकर बहुत मीठे मीठे शब्दों में बोलने लगे, देखिए ये देवता जो है वो बहुत ही लोभी है, इसलिए वो चाहते हैं कि अमृत उनको पहले चाहिए, लेकिन आप असुरगण बहुत महान है, बहुत धैर्य है आपके पास, तो इसलिए आप रुकिए जरा, मैं पहले उनको देता हूं। तो असुरगण से जवाब बहुत अच्छा है, ये तो हमारा तारीफ भी हो, ये तो कितना अच्छा है, इन्होंने बहुत अच्छा। तो मीठे मीठे शब्द कहकर मोहिनी मूर्ति देवताओं के पास जाकर उनको अमृत वहां पर बांट देती है, और असुरगण समझ जाते हैं कि ये मोहिनी मूर्ति ने तो हमें धोखा दिया, लेकिन तब क्या कर सकते, उन्होंने तो पहले ही वो कंडीशन को स्वीकार किया था कि आप जो भी डिसीजन लेने वाले हैं हम स्वीकार करेंगे, तब कुछ नहीं कर पाए। शुक्ल गोस्वामी समझाते हैं कि देखिए, दोनों असुरगण और देवता दोनों ने वही कार्य किया, दोनों ने उतना ही प्रयास किया, लेकिन अंत में क्या हुआ? अंत में जो असुरगण है वह सफल नहीं हुए, निराश हुए, और जो देवगण है वो असलियत में सफल हुए। प्रभु जी समझाते हैं कि यही अंतर है। ऐसे दिख सकता है कि भक्तगण और असुरगण दोनों वही कार्य कर रहे हैं, लेकिन अंततः केवल भक्तगण विजय होते हैं, क्योंकि भगवान उनके पक्ष में है, और असुरगण हालांकि हो सकता है कि वही उतना ही प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि भगवान उनके पक्ष में नहीं है तो अंततः वह सफल नहीं है। और हालांकि असुर कहते हैं भगवान कहाँ है दिखाओ, तो जीवन के अंत में भगवान जरूर उनको दिखाई पड़ता है। किस रूप में? काल के रूप में, मृत्यु के रूप में। और भक्तों के लिए भगवान कहते हैं गीता में कि मैं स्वयं आता हूं गरुड़ जी के ऊपर सवार होकर और मेरे भक्तों को इस जन्म मृत्यु के सागर से उठाकर भगवत धाम आ सकता। तो यह अंतर है देवता और असुर में। एक बार एक पक्ष प्रभुपाद से प्रश्न किया कि क्या एक भक्त असुर हो सकता है? तो प्रभुपाद ने जवाब दिया नहीं। तो फिर भक्त ने पूछा कि क्या भक्त में आसुरी प्रवृत्तियां हो सकती हैं? प्रभुपाद ने कहा हां। हरेक के हृदय में कुछ दैवी प्रवृत्तियां और कुछ असुरी प्रवृत्तियां होती हैं। भगवान कहते हैं कि दोनों जन्म से भी आते हैं। अभिजातस्य, भगवान ईश्वर स्थान करते हैं गीता में, अभिजातस्य इसका मतलब है जन्म से। जन्म से ही एक व्यक्ति के हृदय में अपने पिछले कर्मों के अनुसार कुछ देवगुण और कुछ असुरी गुण होते हैं। तो फिर प्रभुपाद जी समझाते हैं उस भक्त को कि हालांकि एक भक्त के हृदय में कुछ असुरी प्रवृत्तियां भी होती हैं, लेकिन जब वह भक्ति करना शुरू करता है वह किस प्रकार है? वह फैन को ऑफ करने के समान है। जब हम फैन को ऑफ करते हैं क्या वो रुक जाता है? नहीं, कुछ समय लगता है उसको धीरे। तो उसी प्रकार जब हम भक्ति शुरू करते हैं वो फैन को ऑफ करने के समान है। धीरे धीरे ये असुरी प्रवृत्तियां जो हैं वो कम होती हैं। लेकिन प्रभुपाद जी बहुत बहुत महत्वपूर्ण वाक्य कहते हैं। प्रभुपाद जी ये दो श्लोक कोट करते हैं, अभिषेक शूद्राचारो अक्षुभ्रम भवति धर्मात्मा, ये दो श्लोक कोट करते हैं और फिर कहते हैं कि लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि फैन स्विच ऑफ हो गया और फैन उसी स्पीड में घूम रहा है, इसका मतलब गड़बड़ है। अगर फैन का बटन को स्विच ऑफ किया है लेकिन फैन उसी स्पीड में घूम रहा है तो क्या मतलब है? तो गड़बड़ है वो कनेक्शन में। तो उसी प्रकार ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब व्यक्ति सिंसियर और सीरियस गंभीर है भक्ति में, प्रामाणिक और गंभीर, तभी निश्चित है कि धीरे धीरे जितने भी असुरी प्रवृत्तियां हैं वो कम होगी। लेकिन अगर भक्त अपने भक्तिमय जीवन में गंभीर नहीं है तो फिर वह असुरी प्रवृत्तियां वैसे ही रहेंगी। भक्ति जो बहुत साइंटिफिक प्रोसेस है, हृदय में अनर्थ है, बीमारी है, बीमारी के लिए दवाई क्या है? भक्ति। जैसे कि प्रसाद प्रभु हरिनाम के ऊपर बहुत सुंदर प्रवचन दे रहे हैं कि किस प्रकार हमारे दवा बीमारी के लिए दवाई क्या है? हरिनाम। और हर यह दवाई जो है वह मुंह से नहीं लिया जाता है, वो किससे कैसे लिया जाता है? नाम से। प्रभु जी बता रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हरिनाम हम सुनाई देता है बल्कि सुनना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैसे कि कभी हम देखते हैं छोटे बच्चे जो होते हैं, माँ दवाई देते हैं लेकिन वो छोटा बच्चा क्या है, उसको अंदर ही रहता है, ढूंढता है उसको। तो दवाई अंदर नहीं जाएगी तो काम कैसे, फिर बीमार कैसे रहेगी, स्वाभाविक। तो उसी प्रकार भक्ति भी बहुत साइंटिफिक है। तो हालांकि कोई व्यक्ति कह सकता है कि मैं बहुत सालों से हरि नाम ले रहा हूं, भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं बहुत साल क्या, हजार जन्म भी हरि नाम ले सकता है कोई व्यक्ति, लेकिन वो उसी समान होगा, वो बच्चे को दवाई दवाई देने वाली धू धू कर रहा है। उसी प्रकार हरि नाम अंदर दे जा रहा है, दवाई जो है वो बाहर ही गिर रहा है। हरे कृष्ण चल रहा है, साइड सीन हो रहा है, तो दवाई अंदर नहीं जा रहा है, तो फिर कैसे हृदय का शुद्धिकरण होगा, नहीं होगा। तो जब तक व्यक्ति भक्ति के विधानों को पालन करने में गंभीर नहीं है, तब तक जो गंदगी जो है, मल जो है, अनर्थ जो है वो कैसे, और असुरी प्रवृत्तियां जो है कैसे, ये साइंटिफिक प्रोसेस। तो इसलिए अगर ये जो असुरी प्रवृत्तियां जो हैं, जो केवल खुद को, स्वयं को और अन्यों को केवल क्लेश ही प्रदान है, जो हृदय में अनर्थ होते हैं, असुरी प्रवृत्तियां होती हैं, तो खुद को भी क्लेश, दूसरों को भी क्लेश, वो वही फायदा है। तो इसलिए इन असुरी प्रवृत्तियों को खत्म करना चाहिए, फिर उसे स्वयं को भी लाभ होगा, दूसरों को भी लाभ होगा, फिर वास्तविकता में हम अन्यों को लाभ दे सकते हैं। लोकानां षड्भुजों के बारे में, लेकिन इसके लिए भक्ति नए जीवन में गंभीर होना जो विश्व प्रभुपाद जी ने विधि विधानों को दिया है, इनको गंभीरता से पालन करना है, तभी हृदय में जो भी अनर्थ है, जो भी असुरी प्रवृत्तियां जो है, इनको हम खत्म कर सकते हैं। नहीं तो ये संघर्ष तो चलता ही रहेगा हमारे हृदय में, जैसे कि यहां पर असुर का देव में संघर्ष हो रहा है, उसी प्रकार हमारे हृदय में भी संघर्ष होता रहता है। लेकिन जब हम भक्ति में मार्ग को गंभीरता से अपनाते हैं, तभी हम इस संघर्ष को हम रोक सकते हैं, और जब हम इन असुरी प्रवृत्तियों को खत्म कर देंगे और केवल देवगुण को प्रकट करेंगे, तभी भगवान उन अच्छे गुणों को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसे भगवान भगवत गीता के 12वें अध्याय में कहते हैं, अनेक गुण बताते हैं, बहुत बड़ा लिस्ट देते हैं भगवान, केवल इन गुणों को विकसित करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। नहीं तो केवल इतना भी हम भौतिक कार्य कर सकते हैं, हम भक्ति में जीवन में हम अनेक कार्य कर सकते हैं अपने अपने कलाओं के अनुसार, अपने क्षमता के अनुसार, लेकिन जब तक उन कार्यों की वजह से, उन कार्यों का परिणाम यह नहीं होता है कि अच्छे गुण विकसित, जब तक वो अच्छे गुण नहीं आते हैं, तब तक भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। तो इसलिए, और इसका एकमात्र तरीका यह है कि हम गंभीरता से इस भक्तिमय पथ को अपनाएं, और खास करके हरे नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री रघुनाथ की, श्रीमद भागवत की।